इर्मिया 50वां बाब बाबल के हक में। बाबल और कल्दानियों की सरजमीन के हक में इर्मिया नबी की मारिफत खुदावंद का कलमा। कौमों में खबर दो और सुनाओ और झंडा खड़ा करो, मशहूर करो और ना छुपाओ। कहो बाबल ले लिया गया और बाल शरम जदा किया गया और मरुदाक बर्बाद किया गया, उनकी मूरतें शर्मिंदा की गईं और उसके मकरूहात तोड़े गए, क्योंकि शिमाल की तरफ से उन पर एक कौम चढ़ आती है जो उसकी सरजमीन को वीरान करेगी, उसमें कोई बसने वाला ना होगा। वो भाग गए, क्या इंसान क्या हैवान सब चले गए। उन दिनों में बल्कि उसी वक्त, यूं खुदावंद का फरमान है, बनी इसराइल मां बनी यहूदा के आएंगे और गिरिया उजारी करते फिरेंगे और खुदावंद अपने खुदा की तलाश करेंगे। वो सहून की राह की बाबत दरियाफ्त करेंगे, उनका रुख उसी तरफ होगा। आओ हम खुदावंद के साथ अब्दी अहद बांधें, जिसे कभी भूल ना सकें। मेरी उम्मत के लोग भटकी हुई भेड़ें थीं, उनके चरवाहों ने उन्हें गुमराह किया और पहाड़ों पर उन्हें आवारा फिरने दिया। वो पहाड़ पहाड़ और टीला टीला फिरते रहे और अपनी आरामगाह को भूल गए हैं। जो भी उन्हें पाता था वो उन्हें निगल लेता था। उसके मुखालिफ कहते थे कि हमारा कुछ कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने सदाकत की इकरारगा खुदावन बल्कि अपने बाप दादा की जाय तवक्कुल खुदावन का गुनाह किया।
बाबल के दरमियान से रवाना हो और कल्दानियों की सरजमीन से निकल चलो, और उस बकरे की मानद हो जो गल्ले के आगे आगे जाता है, क्योंकि देख मैं शिमाल के मुल्क से बड़ी बड़ी कौमों का एक ग्रोह उभारूंगा और बाबल पर लाऊंगा, तो वो उसके सामने सफ बांधेंगे और वहां से वो ले लिया जाएगा। उनके तीर उस होशियार बहादुर की मानद होंगे जो खाली हाथ वापस नहीं आता, और कल्दान लूटा जाएगा और सब लूटने वाले शेर होंगे, यूं खुदावंद का फरमान है। ऐ मेरी मीरास के लूटने वालों, चूंकि तुम शादमान हो और खुश होते हो और बछड़ों की तरह चरागाह में कूदते हो और जोरावरों की मानंद हिनहनाते हो, इसलिए तुम्हारी मां शर्मिंदा हुई और तुम्हारी वालदा रुस्वा हुई। देख वो कौमों में पिछली होगी, बल्कि दश्त और खुश्क जमीन और सहरा, और खुदावंद के कहर के बायस वो आबाद ना होगी बल्कि बिल्कुल उजाड़ होगी, और जो कोई बाबल के पास से गुजरेगा वो हैरान होगा और उसकी सब आफतों पर फफकारेगा। तुम बाबल के खिलाफ हर तरफ से सफ बांधो, ऐ तमाम तीर अंदाजो उस पर तीर चलाओ, कोई तीर बाकी ना छोड़ो, क्योंकि उसने खुदावंद का गुनाह किया है। ہر طرف سے اس کے خلاف للکارو، اس نے اپنے ہاتھ سپرد کر دیے، اس کی بنیادیں دھنس جاتی ہیں اور اس کی دیواریں ڈھائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام ہے۔ پس اس سے انتقام لو، اور جیسا اس نے کیا تم اس کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ بیج بونے والے کو اور فصل کے وقت درانتی پکڑنے والے کو بابل میں نابود کرو۔ ظالم کی تلوار کے سامنے سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف رخ کرے اور اپنی سرزمین کو بھاگے۔
اسرائیل ایک ہانکا ہوا حلوان ہے، شیر اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ پہلے شاہ اشور نے اسے پھاڑا، اور آخر میں شاہ بابل نبوکدنصر نے اس کی ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں شاہ بابل اور اس کے ملک کو اسی طرح سزا دوں گا جس طرح میں نے شاہ اشور کو سزا دی، اور میں اسرائیل کو اس کی چراگاہ میں واپس لاؤں گا۔ تو وہ کرمل اور باشان میں چرے گا، اور افرائیم اور جلاد کے پہاڑوں میں آسودہ ہوگا۔ ان دنوں میں بلکہ اسی وقت، یوں خداوند کا فرمان ہے، اسرائیل کی بدی کی تلاش کی جائے گی پر نہ ہوگی، اور یہودا کی خطا کی بھی پر نہ پائی جائے گی، کیونکہ جنہیں میں باقی رکھوں گا انہیں میں معاف کر دوں گا۔ مراتائم کے ملک میں چڑھائی کر اس پر، اور فکود کے باشندوں پر چڑھائی کر، اسے ویران کر، اسے نیست و نابود کر، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ اور جو کچھ میں نے تجھ سے کہا اس کے مطابق عمل کر۔ ملک میں جنگ کی شورش اور بڑی بربادی ہے، تمام دنیا کا ہتھوڑا کیسے توڑا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور بابل قوموں میں کس طرح باعث عبرت ہوا، تیرے لیے پھندا لگایا گیا اور تو پکڑی گئی، اور تو نے نہ جانا، تو پائی گئی اور پکڑ لی گئی، کیونکہ تو نے خداوند کو غصہ دلایا۔ خداوند نے اپنا سلا خانہ کھولا اور اپنے غصے کے ہتھیار نکالے، کیونکہ خداوند رب الافواج کا کلدانیوں کے ملک میں ایک کام ہے۔ دور دور سے اس کے خلاف آؤ، اس کے انبار خانوں کو کھولو، اسے تودوں کی مانند ڈھیر بناؤ اور اسے نیست و نابود کرو، اس کا کچھ باقی نہ رہنے دو۔ اس کے تمام جوان سانڈوں کو ہلاک کرو، وہ ذبح کے لیے اتریں، ان پر واویلا، کیونکہ ان کا دن یعنی ان کی سزا کا وقت آ گیا۔ ملک بابل کے مفروروں اور پناہ گزینوں کی آواز ہے، تاکہ خداوند ہمارے خدا کے انتقام کی، یعنی سیہون میں اس کی ہیکل کے انتقام کی خبر دیں۔ بابل کے مقابلے میں تیر اندازوں اور تمام کمان کشوں کو فراہم کرو، اس کے ارد گرد خیمہ زن ہو، اس میں سے کوئی نہ بچ جائے، اس کے کام کے مطابق اسے بدلہ دو، जो कुछ उसने किया वही उसके साथ करो, क्योंकि उसने खुदावन इसराइल के कुद्दूस के खिलाफ शेखी की, इसलिए उसके नौजवान उसके कूचों में गिर जाएंगे और उस रोज उसके तमाम जंगी मर्द फना किए जाएंगे। यूं खुदावन का फरमान है, देख ऐ शेखी बाज, मैं तेरे खिलाफ हूं। यूं खुदावन रब्बुल अफवाज का फरमान है, क्योंकि तेरा दिन यानी तेरी सजा का वक्त आ गया, इसलिए शेखी बाज ठोकर खाकर गिर पड़ता है और कोई नहीं जो उसे खड़ा करे। मैं उसके शहरों में आग भड़काता हूं और ये उसके इर्द गिर्द सब कुछ भस्म करती है।
रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि बनी इसराइल और बनी यहूदा दोनों मजलूम हैं, और सब जिन्होंने उन्हें कैद किया उन्हें पकड़े रखते हैं, वो उन्हें छोड़ देने से इनकार करते हैं, लेकिन उनका वली जोरावर है, उसका नाम रब्बुल अफवाज है, और वो उनके मुकदमे के लिए जरूर झगड़ेगा ताकि मुल्क को आराम दे और बाबल के बाशिंदों को बेचैन करे। कलदानियों पर तलवार, यूं खुदावंद का फरमान है, और बाशिंदगाने बाबल पर और उसके सरदारों और दानिशमंदों पर, उसके गैबदानों पर तलवार, तो वो बेवकूफ बन जाएंगे, उसके बहादुरों पर तलवार तो वो घबरा जाएंगे, उसके घोड़ों और रथों पर तलवार है और उसके अंदर के तमाम मखलूत लोगों पर तलवार है, तो वो औरतों की मानंद बन जाएंगे, उनके खजानों पर तलवार है तो वो लूटे जाएंगे, उसकी नदियों पर तलवार है तो वो खुश्क हो जाएंगी, क्योंकि वो तराशी हुई मूर्तों का मुल्क है और वो मकरूहात पर नाज करते हैं। इसलिए जंगली बिल्लियां और गीदड़ वहां रहेंगे और शुतर मुर्ग वहां बसेंगे, और वो अब तक फिर कभी आबाद ना होगी और पुश्त दर पुश्त उसमें कोई ना बसेगा, जिस तरह के खुदावन ने सदूम और अमूरा और उनके कुर्बो जवार को उल्टा दिया। यूं खुदावंद का फरमान है, उसी तरह उसमें कोई इंसान ना बसेगा और कोई आदमजाद उसमें कयाम ना करेगा। देख, शिमाल से एक ग्रोह और एक बड़ी कौम आती है, और जमीन के किनारों से जबरदस्त बादशाह उठते हैं, वो कमान और नेजे उठाए हैं, वो सख्त दिल हैं और रहम नहीं करेंगे, उनकी आवाज समुंदर की सी है, और वो घोड़ों पर सवार होकर तेरे साथ लड़ाई करने को। ऐ बाबल की बेटी, जंगी मर्द की मानंद आरास्ता हैं, शाह बाबल ने उनकी शोहरत सुनी तो उसके हाथ ढीले हो गए, उसे उस औरत की तरह दुख और तकलीफ हुई जिसे दर्दे जे लगे हों। देख वो उर्दन की झाड़ियों से शेर की मानंद दायमी चरागाह में ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि मैं नागहां उन्हें उससे दूर भगाऊंगा, और जो कोई बरगुजीदा हो मैं उसे उस पर मुकर्रर करूंगा, क्योंकि कौन मेरी मानंद है और कौन मेरे लिए वक्त ठहराएगा, और कौन वो चरवाहा है जो मेरे सामने खड़ा होगा। اس لیے خداوند کی اس مشورت کو سنو جو اس نے بابل کی بابت کی، اور اس کے ان خیالات کو جو اس نے کلدانیوں کے ملک کی بابت سوچے ہیں۔ یقیناً وہ گلے کے چھوٹوں کو گھسیٹ لے جاتے ہیں، یقیناً مسکن ان کے سبب سے ہیبت زدہ ہوگا۔ بابل کی شکست کی آواز سے زمین لرزاں ہے اور قوموں میں فریاد سنائی دیتی ہے۔